Hare Krishna. So today we are reading from Srimad Bhagavatam. यहाँ पर हिंदी रखा है तो हिंदी बोलेंगे. श्रीमद् भागवत से आज हम कथा करेंगे, दशम स्कंद 45वां अध्याय और 14 से 23 नंबर के श्लोक आज लिखे गए हैं. कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की रक्षा. मई भृत्य उपासीने भवतो विबुधादयः बलिं हरन्त यवनताः किमु तानि नराधिपः मयि भृत्य उपासीने भवतो विबुधादयः बलिं हरन्त यवनताः किमु तान्ये नराधिपः मयि भृत्य उपासीने भवतो विबुधादयः बलिं हरन्त वनताः किमु तान्ये नराधिपः किमूतान्ये नराधिपः. लेडीज मुझमें प्रत्ये सेवक रूप उपासी ने सेवा में उपस्थित भवतः आपकी विभूत देवता आदयः इत्यादि बलिम प्रशस्ति प्रशस्ति या भेंट हरन्ति लाएंगे अवनतः विनीत भाव से झुके हुए किम उत तो फिर क्या कहा जाए अन्य दूसरे नर मनुष्य का अधिपाहा शासक. अनुवाद. चूंकि मैं आपके निजी सेवक के रूप में आपके पार्षदों के बीच उपस्थित हूँ, ये कृष्ण भगवान उग्रसेन महाराज से बता रहे हैं, अतः सारे देवता अथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति आपको अभिवादन करने के लिए सिर झुकाते हुए आएंगे, तो फिर मनुष्यों के शासकों के लिए क्या कहा जाए. अगले श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है. तत्पश्चात भगवान अपने सारे निकट के परिवार वालों को तथा अन्य संबंधियों को उन विविध स्थानों से वापस लेके आए जहाँ वे कंस के भय से भाग कर गए थे. उन्होंने यदुओं और वृष्णियों और अंधकों मधुओं दार्शारहों और कुकुरों इत्यादि जाति पक्ष वालों को सम्मानपूर्वक बुलाया और उन्हें सांत्वना भी दी क्योंकि वे विदेशी स्थानों में रहते रहते थक चुके थे. तत्पश्चात ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने अपने घरों में फिर से बसाया और बहुमूल्य भेंटों से उनका सत्कार किया। अभी हम एक एक श्लोक के ऊपर थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर ये 9 श्लोक पहले क्या बताया था हम भूल जाएंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो ये जो अध्याय है इसकी पार्श्वभूमि इस प्रकार से है, कृष्ण भगवान मथुरा में आने के बाद उन्होंने कंस के अखाड़े में कोल्हापीड़ का वध किया, चाणूर मुष्टिक का वध किया, फिर और 3 योद्धाओं का शल तोशल और क्या नाम था 5वें योद्धा का, चाणूर मुष्टिक कूट शल और तोशल, ये 5 योद्धाओं का वध किया। उसके बाद में कंस का वध किया, उसके बाद में कंस के 8 भाइयों का वध किया। उसके बाद में जब अखाड़ा शांत हो गया तो वो उग्रसेन के जहाँ पर वो कैद थे वहाँ पर गए, उग्रसेन को उन्होंने मुक्त किया। उसके बाद वसुदेव और देवकी के कैद में गए और वहाँ पर उनको मुक्त किया। फिर उन्होंने उग्रसेन को राजा के रूप में प्रस्तापित किया, पुनः प्रस्तापित किया। पहले तो राजा थे ही वो, उनको कंस ने ज़बरदस्ती राज्य से हटाकर राज्य को हड़प लिया था और पिता को जेल में डाल दिया था। ये संस्कृति हम मुगलों में देखते हैं, है ना, जितने भी राजा हुए उन्होंने अपने पिताजी को मार कर या कैद करके राज्य स्थापन किया है। यही डेमोनिया कल्चर है, जो राक्षसी कल्चर होता है जिसमें माता पिताओं का ध्यान नहीं रखते, माता पिताओं के पास जितना अधिकार है उसको बलपूर्वक छीन लेते हैं और उनको या तो मार देते हैं या तो कैद कर देते हैं। तो फिर उग्रसेन को भगवान ने कंस मथुरा नगरी का राजा बनाया और अभी वो उग्रसेन का उत्साह हौसला बढ़ाने के लिए उनको उनसे बात कर रहे हैं। नंबर 1 तो उन्होंने स्वयं उस राज्य पे राजा बनना उचित नहीं समझा, ये भगवान की महानता है और नम्रता भी है। उन्होंने उग्रसेन को राजा बनाया और ये बहाना बताया कि यदुओं को शाप है कि वो मथुरा का राजा नहीं बन सकते हैं। लेकिन वैसे देखा टेक्निकली उग्रसेन भी यदु ही थे, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान की इच्छा थी इसलिए उसके ऊपर जाकर भगवान ने उनको राज्य में स्थापन कर दिया। तो वहाँ पर उनका उत्साह बढ़ाने के लिए वो बोल रहे हैं कि जब आप राजा बनोगे तो मैं मेरे सभी जो अनुयायी है, मित्र है, पार्षद है, उन सबको लेकर आपका दंडवत करूँगा और जितने भी देवताओं के राजा है, देवताओं का राज्य है, वहाँ के लोग भी आपको आकर दंडवत प्रणाम करेंगे। तो फिर इस दुनिया के, इस विश्व के, इस पृथ्वी के ऊपर जो राज्य हैं उनके राजा तो क्या है, तो आएंगे ही आएंगे। जब देवता आपको आके प्रणाम करेंगे, राजा के रूप में आपका सम्मान करेंगे, तो फिर बाकी लोगों को न आने से भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी आएंगे और आपको सम्मान देंगे। जैसे कि राजा है, बलशाली भी थे वो, लेकिन उनका पुत्र राक्षस इतना बलशाली था कि उन्होंने उनको कैद कर दिया। इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग थिंग, एक व्यक्ति जो राजा है और अभी वो बूढ़ा हो चुका है तो उसका जवान राजपुत्र उसको बलपूर्वक पदच्युत करके जेल में डाल देता है, तो कितना उसके लिए डिप्रेशन हो सकता है ना, कितना दुख हो सकता है उसको, उसके बुढ़ापे में उसको कितना कष्ट हो सकता है। तो ऐसा आत्मसम्मान जिसने खो चुका है और जिसने अपना मन का जो उत्साह है वो भी खो चुके हैं, दोबारा उसको उसी पोजीशन में बिठाया गया है, स्थिति बदल गई है, फिर भी राज्य करना है तो पॉजिटिव थिंकिंग, हौसला, इतर बाकी लोगों से अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। किसी को राज्य में बिठा दिया और नोबडी केयर्स फॉर हिम, तो फिर उसको राज्य करने का उत्साह नहीं आएगा। अगर राजा के राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, अगर भगवान का प्रतिनिधि के रूप में वो पद लेकर अगर किसी को प्रजा को गाइड करना है तो अन्य लोगों को आकर उसका हौसला बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पुराने ज़माने में राजा के दरबार में भाट हुआ करते थे। व्हाट दे वुड डू, दे विल सिंग ग्लोरीज ऑफ द किंग। एक राज शिष्टाचार का एक भाग था वो कि एक नियमित रूप से राजा के गौरव में कविता गाई जाती थी ताकि राजा को लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और आगे भी करते रहना चाहिए, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए। क्योंकि कभी कभी राजा निरुत्साही भी होते थे, युद्ध में हार के आते थे या किसी की मृत्यु पुत्र की मृत्यु होती थी युद्ध में। तो राजा का जो है जीवन निजी नहीं होता है, वो सामाजिक होता है। एक राजा का हम लोग शिवाजी महाराज के जीवन में भी देखते हैं, कई प्रकार के निजी जो घटनाएं हैं और स्थितियां हैं उनको त्याग कर राज्य के कल्याण के लिए आगे जाना पड़ता था। जब उनकी पत्नी मर गई फिर भी उनको जाना पड़ा अफजल खान को मारने के लिए, और पत्नी उनके ना होते हुए पीछे गुजर गई। तो ऐसे कई सारे चीज़ें होती हैं जो राजा के जीवन में कश्मकश पैदा करते हैं। इसलिए राजा को हमेशा अप्रिसिएशन प्रशस्ति देना बहुत ज़रूरी होता है, उसको योग्य समय पर उपहार देकर उनका उत्साह बढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। और ये बड़े राज्य में और छोटी संस्था में दोनों जगह आवश्यक है। राजा जो हमारे नेता हैं उनको ऐसे वी कैन टेक हिम फॉर ग्रांटेड कि वो तो ऐसे ही हैं, वो तो सहनशीली होंगे, वो तो बड़े हौसलेदारी होंगे, वो तो हमेशा उत्साही होंगे, वो तो कृपा पात्र ही हैं, ऐसा समझकर हमको नहीं चलना चाहिए। हमारे राजा को हमको हमेशा उत्साह देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उनके छोटे छोटे कार्यों को। ऐसे नहीं कि एक बार बर्थडे के दिन एक दिन उनको साल में एक बार अप्रिशिएट कर दिया तो फिर एक साल के लिए छुट्टी। नियमित रूप से राजा को अपना दिव्य कार्य और श्रेष्ठ कार्य करने के लिए रेगुलरली थैंक यू और अप्रिशिएट करना बहुत आवश्यक है ताकि उनका जो उत्साह है वो बना रहे। तो भगवान ही बड़ी कुशलता से उनको बता रहे हैं कि देवता लोग आपको अपना राज्य छोड़कर यहाँ पर वंदन करने के लिए आएंगे। उसके आगे भगवान का जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही डीप है। भगवान जब मथुरा गए तो जहाँ जहाँ गए, मथुरा गए नहीं जहाँ पर भी गए, उसका सर्वांगीण विकास करने का उन्होंने प्रयास किया है, होलिस्टिक अपलिफ्टमेंट। कैसे? माइंड बॉडी सोल, हाँ, फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये चारों प्रकार का जो अपलिफ्टमेंट है उद्धार है बहुत आवश्यक है। तो भगवान ने कंस को मारा, देवताओं का कार्य पूरा किया उन्होंने, राक्षस को मार दिया जिसके लिए जिसके भय से सब लोग भयभीत थे, उसको मार दिया, उसके साथीदारों को मार दिया, राक्षसों का क्या करते उसको नष्ट कर दिया उनको, राजा को भी पुनर्स्थापित कर दिया। लेकिन ऐसे बहुत लोग थे, दो प्रकार के लोग थे, कुछ लोगों को मजबूरन मथुरा में रहना पड़ता था और मथुरा का जीवन था बड़ा आतंकमय था, वेरी फिल्ड विथ एट्रोसिटीज, हाँ, कोई कृष्ण के बारे में बात नहीं करना चाहिए, वसुदेव देवकी के पुत्रों का क्या हुआ नो वन शुड टॉक, आठवें पुत्र का क्या हुआ बात नहीं करना है किसी को, अपराध था, नेशनल ऑफेंस था वो, इसलिए कोई भी पब्लिक जगह पर इस विषय में बात नहीं करते थे, आते थे अपना टैक्स चुकाते थे और चले जाते थे। और कुछ लोगों को वहाँ पर मजबूरन अपनी उपजीविका के लिए रहना पड़ता था, लेकिन कुछ लोग इस आतंक से परेशान होकर मथुरा नगरी छोड़कर दूर दूर बसे थे। यहाँ पर क्या लिखा है कि वो लोग क्योंकि अपनी मातृभूमि से दूर जाकर रह रहे थे, मातृभूमि का अपना एक स्थिति होती है जो हम लोग अच्छी तरह से उस पर रह सकते हैं, वहाँ का हवा पानी, वहाँ का भोजन, वहाँ के ताल तरीके, वहाँ का रीति रिवाज, वहाँ के फेस्टिवल्स, वहाँ का लोगों का संग, रिश्तेदारों का संग, इसमें लोग बहुत एक होमली फीलिंग करते हैं, है ना, कि अपने अपने घर की भावना को अनुभव करते हैं। तो जब वो परदेश गए, मतलब वहाँ से मथुरा वाले लोग जब मथुरा के बाहर रहने गए तो वो वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का कल्चर, वहाँ का वातावरण से बहुत परेशान थे, जैसे बिछड़ा हुआ जीव होता है ना, अपने घर से बाहर दूर चला गया है। ऐसे कई सालों तक उन्होंने अपना जीवन बिताया कष्ट में, मातृभूमि की याद में। तो भगवान ने बड़े ही कुशलता से, बड़े ही सोच विचार से, कितने यदु वृष्णि अंधक मधु दाशार्ह और कुकुर ऐसे अनेक जाति पक्ष, अनेक कास्ट के लोग थे जो आज भी भारत में अलग अलग स्टेट्स में विभाजित है। द्रविड़ लोग साउथ में हैं, आंध्र लोग आंध्र प्रदेश में हैं, उत्कल के उत्कल में हैं, और भाई बाकी यवन और म्लेच्छ विदेश चले गए हैं पश्चिम जगत में। ऐसे अनेक जातियां जो कंस के आतंक से परेशान थी, उनको जा जाकर सम्मान के साथ बुलाया और फिर अपनी नगरी में बसाया। हाउ वंडरफुल, हाँ, कृष्ण भगवान कितने डीप विचार करते हैं अपने प्रजा के प्रति। तो ये उनका सर्वांगीण सामाजिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर राज्य को बसाना है तो कौन से वस्तुओं की आवश्यकता है। इसमें ये भी एक अंग है कि उन्होंने बिछड़े हुए जीवों को दोबारा आकर मथुरा में प्रस्थापित किया। और न केवल उन्होंने उनको बसाया लेकिन बहुमूल्य भेंटों से उनका सत्कार किया। तुम एकदम फील वॉन्टेड है, राजा को भी उन्होंने बहुमूल्य भेंट दिया और उनको थैंक यू अप्रिसिएशन प्लीज कंटिन्यू। और ये भी उनको विश्वास दिलाया, आश्वासन कि जब भी कुछ संकट आएगा मैं हूँ, मैं आपकी सेवा में रहूँगा, हम दोनों भाई जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके पास रहेंगे। फिर अगले श्लोक में कहा गया है, इन वंशों के लोगों ने भगवान कृष्ण तथा संकर्षण की बाहुओं का संरक्षण पाकर यह अनुभव किया कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। इस तरह वे अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहते हुए पूर्ण सुख का अनुभव करने लगे। कृष्ण और बलराम की उपस्थिति से अब उन्हें सांसारिक ज्वर नहीं सताता था। या प्रेमी भक्त प्रतिदिन मुकुंद के कमल सदृश नित्य प्रफुल्लित मुख को देख सकते थे, जो सुंदर दयामय मंद हास्य युक्त चित्तवनों से विभूषित हुआ करता था। वेरी हैवी हिंदी लैंग्वेज बट वेरी ब्यूटीफुल। श्री कृष्ण भगवान का अस्तित्व जहाँ पर भी होता है वहाँ पर केवल उनके होने से तापत्रय नष्ट हो जाता है। संसार का जो तीन प्रकार के ताप हैं वो केवल भगवान कृष्ण के होने से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के चेतनामय होने से भी वो नष्ट होने से नज़र आते हैं। अभी कृष्ण भगवान शरीर से यहाँ पर नहीं है लेकिन कृष्ण भगवान की चेतना जब हम अपनाते हैं तो कृष्ण भगवान की चेतना में, कृष्ण भगवान के नाम में, उनकी लीलाओं में, उनके सेवा में वो उपस्थित हैं। तो ऐसे स्थिति में उन तापत्रयों का असर उन जीवों पर नहीं होते हुए नजर आता है। यहाँ पर तो मथुरा में कृष्ण भगवान ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ, क्या कहा गया है, उनका कमल जैसा मुख का रोज दर्शन किया करते थे। जैसे वो ब्राह्मण था मायापुर नवद्वीप के अंदर, उसने अपना घर जो है जगन्नाथ मिश्रा के बाजू में बसाया क्योंकि उसे भगवान ने बताया था कि वो कौन है। तो उसके जीवन का कार्य क्या था, उसके बाद में रोज चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना, बस एवरी डे विथ फुल नॉलेज ये परम भगवान है। मैं किसी को बता सकता नहीं लेकिन मैं जानता हूँ कि ये परम भगवान है। पूरा जीवन उसने केवल उनका रोज दर्शन करते हुए आनंद से किसी भी ताप से त्रय से मुक्त होकर बिताया। उस तरह से ये जो बसाए गए लोग थे इनके जीवन का लाभ क्या था वहाँ आने के बाद में। नंबर वन तो जीवन का जो तापत्रय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो कष्ट है, जो जीवन में रहने के लिए दुख भोगना पड़ता है, उससे वो तुरंत मुक्त हो गए। और साथ साथ एक तो दुख मुक्ति है, दूसरा आनंद प्राप्ति है। भगवान का चेहरा कैसा था, सुंदर तो था ही, करुणामय दयामय, और हमेशा मंद स्मित हास्य उनके मुख पर रहा करता था। और आगे बताया गया चितवन यानी कि साइड ग्लांसेस, साइड लॉन्ग ग्लांसेस और कृपा कटाक्ष कह सकते उसको। ऐसे मधुर भगवान के उनको देखने से, हास्यमय चेहरे से, सुंदर चेहरे से और करुणा भरे हुए नज़र से जब उनको देखते थे तो उनके सारे दुख कष्ट मिटकर उनको दिव्य आनंद का अनुभव हुआ करता था। तो ऐसे भगवान ने केवल अपने होने से मथुरा के लोगों का कंप्लीट स्पिरिचुअल उद्धार कर दिया, आध्यात्मिक उद्धार कर दिया। यहाँ तक कि उस नगरी के अत्यंत वृद्धजन शक्ति और ओज से पूर्ण युवा होने लगे क्योंकि वे अपनी आंखों से निरंतर भगवान मुकुंद के कमल मुख का अमृत पान करते थे। जैसे पांडवों को भगवान मिले बहुत दिन के बाद, तो भागवत में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि मृत व्यक्ति में जब जीवन प्राप्त होता है तो कैसे अनुभव होता है, समबडी डेड बिकम्स अलाइव। तो क्या अनुभव होगा? उस प्रकार से पांडव भगवान के ना होने से मृत से ही थे, लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ बहुत दिन के बाद, मानो उनके अंदर जीवन, लाइफ केम बैक टू देम, ब्लिस केम बैक टू देम, आनंद की अनुभूति उनको हुई। जैसे मरे हुए शरीर में आत्मा का प्रादुर्भाव होता है, तो यहां पर भी वृद्ध जन शरीर से, समय के प्रभाव से वृद्धापकाल का अनुभव कर रहे थे, बुढ़ापे के जीवन का। लेकिन फिर भी जब कृष्ण भगवान के द्वारा उनको वापस लाया गया, तो उनको मानो ऐसे अनुभव हुआ कि मैं जवान हो रहे हैं, एक ओजस्वी अनुभव को करने लगे वो। तो भगवान का होना कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। वृद्धों को भी जवान होने का अनुभव होने लगा, और नित्य मुख कमल के निवर्तन निरंतर दर्शन करने से उनको अमृत पान करने का अनुभव होने लगा। ऐसा मथुरा का जीवन था। तत्पश्चात हे महाराज परीक्षित, देवकी पुत्र भगवान कृष्ण और भगवान बलराम के साथ नंद महाराज के पास पहुंचे। दोनों विभुओं ने उनका आलिंगन किया और इस प्रकार से बोले। कृष्ण बलराम ने कहा, हे पिताश्री, आप तथा माता यशोदा ने हम दोनों को बड़े स्नेह से पाला पोसा है और हमारी इतनी अधिक परवाह की है। निस्संदेह माता पिता अपने संतानों को अपने प्राणों से अधिक प्यार करते हैं। वे ही असली माता पिता हैं जो पालन पोषण और देखरेख करने में असमर्थ संबंधियों द्वारा परित्यक्त बालकों को देखभाल अपने ही पुत्रों की तरह करते हैं। ये पूरा पढ़ता हूं उनका संपाद। हे पिताश्री, आप सब अब ब्रज लौट जाएं। हम आपके शुभचिंतक मित्रों से कुछ सुख देने के लिए हम आपके शुभचिंतक मित्रों को कुछ सुख देने के बाद तुरंत आपके तुरंत ही आपको तथा उनके क्या हिंदी अपने उनकी उन प्रिय संबंधियों को देखने के लिए आएंगे। हमारे वियोग से दुखी हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ दिन हम लोग यहाँ पर रहेंगे, जो हमारे संबंधी हैं उनको थोड़ा सुख देंगे, और उसके बाद में आप सब लोग ब्रज में जो हमारे विरह में दुखी रहेंगे उनको मिलने के लिए आएंगे। और बीच में एक बात बता रहे हैं कि जैसे कि होते ना अबैंडन चिल्ड्रन, ऑर्फन्स, वो अपने आप को बता रहे हैं कि हम लोग उसी बालकों की तरह थे, क्योंकि हमको तो अपने माता का संग प्राप्त नहीं हुआ, पिता का संग प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आपने अपने बालकों की तरह हमारी देखभाल की। सो वी आर ग्रेटफुल टू यू कि उस समय जब हमको कष्ट था, कंस का भय था और माता पिताओं को मजबूरन हमको भेजना पड़ा, तो आपने हमको स्वीकार किया। माता यशोदा और आपने हमको स्वीकार किया, और आपके बड़े ऋणी हैं, क्योंकि आपने बड़े ही कष्ट के समय असहाय अवस्था में वात्सल्य प्रेम दिया और हमको हमारी परवाह की, हमको लालन पोषण किया, बड़ा किया, और आज हम इस लायक हो गए कि हम दोबारा अपनी माता को मिल सकें। हाँ, अच्छी अवस्था में, ऐसे नहीं कि जेल में पड़े हुए हैं वहाँ मिल रहे हैं वापस जा रहे हैं, ऐसे नहीं। ऐसी अवस्था में आपने हमको ला के रखा कि हम आकर उनको वध करके माता पिता को रिहा कर सके, उनको मिल सके, और उनको हमने माँ पुत्र के रूप में इतने दिन सुख नहीं दिया, उनको भी सुख देने का मौका भी आपने ही उत्पन्न किया है, इसलिए हम आपसे बड़े ऋणी हैं। इसलिए अब अभी आप कुछ समय के लिए आप वापस जाइए, ब्रज में लौट जाइए, और इनको सुख देने के बाद में उन लोगों को मिलने के लिए हम आएंगे वापस। अब ये जो प्रसंग है ये बहुत ही बाका प्रसंग है, इतना सिंपल लगता है ना, भगवान कितनी सिंपल बात कर रही था, लेकिन नंद महाराज पे क्या बीत रही है, ये बहुत ही विकट प्रसंग है। नंद महाराज तो केवल उनको लेके आए थे, अक्रूर को हाँ बोला था, और पीछे पीछे हम खुद भी निकल गए थे धनुर्यज्ञ को देखने के लिए, और धनुर्यज्ञ देखने के बाद में बच्चों को भी धनुष देखने को मिलेगा, उसका यज्ञ देखने को मिलेगा, फिर सब लोग लौट के आएंगे, इसी भावना से वहाँ निकले थे वो। लेकिन अभी उन पर एक बड़ा भावनिक आघात हो रहा है, बहुत भयंकर, कि अभी कृष्ण भगवान उनको बता रहे हैं कि आप लौट जाओ और हम लोग आपके संग में नहीं आएंगे। तो नंद महाराज को बड़ा सदमा पहुंचा, बहुत गहरा सदमा। और ऐसा कहते हैं कि जब वसुदेव से और देवकी से ये वार्तालाप कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, हे माता पिता, आपने हमको जन्म दिया, और आपकी सेवा में हम नहीं रह सके। वो पुत्र कैसा पुत्र है जो अपनी माता पिता की सेवा नहीं कर सकता है। हम भी बड़े दुर्भाग्य थे, इतने साल आपसे दूर रहे और आपकी सेवा नहीं कर सके। अभी हम आपके पास आ चुके हैं, ये भी विधाता की इच्छा है कि हम आप तक पहुंच गए हैं। अभी हम आपसे वादा करते हैं कि आपके पास ही रहेंगे और आपकी ही सेवा करेंगे, जो आप कहेंगे वैसा ही करेंगे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरी करेंगे। ये जब वाक्य उनका, और उन्होंने जब ऐसे बोल के वसुदेव और देवकी के पैर छुए, वहीं पर नंद महाराज के ऊपर सदमा पहुंच गया था। वो समझ गए थे कि अभी ये आने वाले नहीं। और कुछ देर बाद में ये घटना हुई, प्रत्यक्ष जाके उन्होंने बोला कि हाँ भाई अब जाओ और हम नहीं आएंगे। नंद महाराज बड़े दुखी हो गए, सब ग्वाल बाल बड़े दुखी हो गए, क्योंकि वो भी संग उड़ के गए थे। उन्होंने कृष्ण का पराक्रम अपनी आंखों से देखा था ना, जाण और मुष्टिक कूट शल तो शल को मारते हुए, कंस को मारते हुए अपने आंखों से, और वो गीत गा रहे थे उधर, नाच कर रहे थे गीत गाकर अखाड़े में कंस के ब्रज के जैसे आनंद लेने का प्रयास कर रहे थे। सब लोग लौट गए दुखी होकर। नंद महाराज के पैर नहीं चल रहे थे, आगे कैसे जाएं वापस, क्या बोलेंगे नंदगांव वासियों को, क्या बताएंगे, क्या हुआ, माता यशोदा को कैसा मुख दिखाएंगे। तो फिर वो एक गांव में रुक गए बीच में। उस गांव में अरे ब्रज के राजा आ गए, इसलिए सब लोगों ने बड़ा सम्मान किया उनका, बड़ा उत्सव मनाया और बड़ा भोजन बनाया और गीत गाए और उनके मनोरंजन के लिए उनके, अरे बड़े दिनों बाद हमारा कितना भाग्य है, हमारे नंद महाराज हमारे गांव आए हैं, वो मथुरा के रास्ते पर हैं। इतना गौरव किया कि उस गांव का नाम ही गौरव पड़ा। लेकिन आप समझ सकते हैं, सब लोग उनके आने से खुशियां मना रहे हैं और वो इतना दुख का अनुभव कर रहे हैं। उनका सिचुएशन अलग है ना, ही इज सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट मिजरी, कि मैं भी कैसे जाऊं नंदगांव में। फिर कुछ दिन बाद वहाँ से निकल जाते हैं और बड़े ही धीरे धीरे रुक रुक के रोते रोते आगे पहुँचते हैं। एनीवे बड़े आगे की बड़ी दुखद और बड़ी भावनामय घटना है, उसको हम कभी अलग समय वर्णन करेंगे, वो जब नंदगांव पहुँचे तो क्या हुआ। एनीवे तो इसका आचार्य बताते हैं कि भगवान ने ऐसे क्यों किया। एक तरफ लगता है कि भगवान ने बड़ा ही अन्याय किया ब्रजवासियों के ऊपर, हाँ इतना समय उनको अपने पास रखा, दिल लगाया उनके ऊपर, उनका भी दिल अपने पर लगा लिया और फिर छोड़ दिया। वो गौलोक में सीतामा ने राजा रानी को शाप दिया था, 100 साल तक तुम अपने प्रियतम से दूर रहोगी क्योंकि तुमने मेरा अपराध किया है। क्योंकि राजा रानी ने उसको शाप दिया था कि तुम राक्षस बनोगे, क्योंकि राधा रानी कृष्ण भगवान को एक कुंज में मिलना चाहती थी, तभी वो समझ गए कि वो विरजा गोपी के साथ में संवाद और संग कर रहे हैं, तो बड़ी परेशान हो गई थी वो। और वो बड़े 1,00,000 घोड़ों के बड़े शहर जैसे रथ में बैठकर वो उस कुंज के पास जब गई, तब सीतामा वहाँ पर पहरा दे रहे थे, उनको रोका। तो एक दो बार हो गया ऐसे, दूसरी बार जब हुआ तभी वो बहुत गुस्सा हो गई, उन्होंने शाप दिया कि तुम राक्षस बन जाओगे। तो उन्होंने भी कहा कि तुम अपने प्रियतम से 100 साल तक विरह में रहोगी और पृथ्वी पर जाओगी। उन्होंने भी कहा राक्षस बनना मतलब नीचे आना पड़ेगा ना। तो ये जो सब घटना कनेक्टेड है, और ब्रजवासी लोग उनके संग के साथ, उनके साथ रहते हुए जो उनका भक्तिपूर्ण सेवा थी, उनकी डिवोशनल सर्विस थी, उसमें वो परिपूर्ण हो चुके थे। मानो लाइक ग्रेजुएशन इन दी सब्जेक्ट ऑफ बीइंग विद कृष्णा एंड परफेक्शन ऑफ लाइफ इन बीइंग विद कृष्णा। हाँ, कृष्ण भगवान के साथ रहते हुए जो परिपूर्णता है उसको प्राप्त कर चुके थे। तो कृष्ण भगवान भी ये समझ चुके थे अब ये समय आ गया है कि उनको जो आगे की प्राप्ति है, हाँ विप्रलंब भाव, विरह भाव का जो आनंद है वो भी उनको देना चाहिए। इसलिए वो अपने शरीर को लेकर ब्रज के बाहर चले गए, लेकिन भाव रूप में सभी ब्रजवासियों के हृदय में प्रवेश किया उन्होंने, और उनको उत्कट रूप से भाव रूप का संग देकर विप्रलंब भाव का आनंद देने लगे वो। तो वो ब्रजवासियों के ऊपर उन्होंने कोई क्रूर कार्य नहीं किया, ब्रजवासियों को वो उससे भी श्रेष्ठ आनंद दे रहे थे जब भी मथुरा वासियों को, द्वारका वासियों को, हस्तिनापुर वासियों को अपने शरीर का संग दे रहे थे, और वो भी ऐश्वर्य भाव में। और ये जो आनंद दे रहे हैं वो माधुर्य भाव में दे रहे हैं, जिसमें भगवान की भगवान होने की अनुभूति नहीं है, दे डोंट नो दैट इज गॉड। एट द सेम टाइम उनके हृदय में रहकर उनको भाव रूप से उत्कट आनंद का अनुभव दे रहे हैं, मानो ग्रेजुएशन से उनको पोस्ट ग्रेजुएशन और सुपर ग्रेजुएशन और पीएचडी का भक्ति मार्ग में वो अनुभव दे रहे थे। ये आचार्य लोग हमको समझाते हैं, क्योंकि गोपियां भी उनके संवाद में कहती हैं कि इस व्यक्ति से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए, बड़े दुष्ट हैं, इनके साथ भी दिल नहीं लगाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो कभी भी कृष्ण पर दिल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ समय बाद अपने छोड़कर आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर कर आपको दुख के सागर में डुबा कर चले जाते हैं, ऐसा इनका नेचर है। और एक साथ पर कई लोगों के साथ प्रेम करते हैं, सबके दिल को तोड़ देते हैं। तो अगर आप पढ़ते जाएंगे ये सब, आपको लगेगा हाँ ये कृष्ण बहुत दुष्ट है, ऐसा आपको लगेगा ऐसा क्यों किया उन्होंने, ऐसा आपको लगेगा। हाँ, लेकिन जब आचार्य लोग हमको समझाते हैं कि इसके पीछे क्या रहस्य है, जो विप्रलंब भाव का जो दिव्य उत्कट आनंद दिया, इसका प्रमाण क्या है कि जब उद्धव जी वृंदावन में गए तो वो भी भगवान के संग में रहते हुए परिपूर्णता को प्राप्त कर चुके थे, है ना। साथ में रहना, खाना पीना, शिकार खेलना, हंसी मजाक करना, सोना राज दरबार में, मंत्रणा करना मंत्री के रूप में, हर प्रकार से उनके निकट थे, उनके दिखते भी उनके जैसे थे, वो कृष्णमय ही थे पूरे, उनका शरीर भी उनके जैसा रंग का था। हर गोपियां जब देखा पहला तो उनका कृष्ण ही आ रहे, तो वो बहल गए थे कि भाई कृष्ण आ गए, इतनी उनकी परिपूर्णता थी। लेकिन जब उन्होंने ब्रजवासियों का कुछ समय के लिए संग किया, नंद बाबा के साथ, यशोदा के साथ, गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ, गायों को भी देखा, बछड़ों को देखा, पंछियों को देखा, जानवरों को देखा, तो एक ही तीव्र ऐसी अनुभूति उनको प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, बहुत समझना जरूरी है, कि मैं जो समझता था कि मैं कृष्ण के संग में अपने जीवन की श्रेष्ठ परिपूर्णता को प्राप्त कर चुका हूँ, और इसके आगे और कुछ नहीं है, और क्या प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, एवरीथिंग यू हैव अचीव्ड, तो उसको उस स्थिति की भावना को लेकर वो द्वारका से आया था। और जब ब्रज में आया तो उसको एकमात्र तीव्र बार बार अनुभूति क्या हुई कि ये लोग जो है वो मुझसे कई करोड़ों हजारों लाखों गुना भगवान के निकट है, जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, और मैं वहाँ से उसी बात को लेकर, मेरा एक स्ट्रेंथ है, वो मेरे स्ट्रेंथ को लेकर मैं यहाँ पर उनको कुछ सहायता करने आया हूँ, तब उसको एक ही अनुभूति होती है, वो कोई काउंसलिंग नहीं कर पाया गोपियों को, कोई अपना संग देकर उनका दुख निवारण करने का प्रयास करने के लिए वो आया था, वो कुछ नहीं कर पाया, वो केवल इसी अनुभूति को प्राप्त करके वापस चला गया कि ये गोपियाँ मुझसे इतने निकट है, मतलब कृष्ण भगवान से इतने निकट है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। ये और एक प्रमाण है कि भगवान ने गोपियों को ऐसे ही दुख सागर में डुबा कर नहीं गए, वो जब एक कृष्ण अनेक गोपियों के साथ में थे और कभी कभार अपने रूपों को विभाजित भी करते थे, लेकिन परमानेंटली भाव रूप में, उत्कट रूप में कृष्ण के संग वो फॉर ऑल टाइम टू कम हृदय में भाव रूप में निवास करने लगे उनके, और रोज नित्य क्षण प्रतिक्षण उनको उस दिव्य विप्रलंब भाव का आनंद देते रहे। तब किसी और को, किसी लोगों को वो आनंद दे रहे थे शरीर के संग का। तो ऐसा ये ब्रज भूमि का रहस्य है, और इस ब्रज भाव को समझने के लिए बड़े बड़े आचार्य लोग तपस्या करते हैं इसको पकड़ने के लिए। बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि कथा करना तो बहुत आसान है, स्टडी करना भी आसान है, लेकिन वो भाव जो है, जिस भाव के लिए कृष्ण भगवान उनके बिखे हुए थे, उनके लिए वो सोल्ड आउट टू देम, ये सब कर रहे थे वो, लेकिन उनको भी द्वारका में सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, बड़े विकट थे वो, बड़े कष्ट में थे। तो यहाँ पर एक विधवासी आए थे हमारे हॉस्पिटल में, नंदगांव की, तो वो उनका कोई मेजर सर्जरी था, 40 डेज यहाँ पर रहे, ब्रिजभूषण गोस्वामी, उसको हम बिरजी बाबा कहते थे ना बड़े प्रेम से। तो बिरजी बाबा जो थे बड़े उम्र के थे, और उसको कहते हैं ब्रज भाषा में बड़े कर्रे ब्रिजवासी थे वो, मतलब हार्ड कोर ब्रिजवासी, उनका सोचना विचार करना जीवन जो है पूरे पक्के 100% शुद्ध ब्रजवासी की तरह था उनका। और कर रहे मतलब बड़े तेज भी थे वो बात करने में, और स्ट्रांग थे, एग्रेसिव। तो वो जब यहाँ पर थे तो वो हर रोज बिना चुके एक ही कथा बताते थे, आप सुबह जाओ शाम जाओ उनको मंदिर लेते वक्त रास्ते में जाओ तो वो एक ही कथा बताते थे, कैसे अक्रूर जी कृष्ण बलराम को वृंदावन से लेके गए, मथुरा गए, और कैसे भगवान ने चाणूर मुष्टिक कूट शल तोशल कंस सबको मारा, और कैसे उग्रसेन को राजा बनाया, और कैसे उन दोनों को रिहा कर दिया, और कैसे वो वसुदेव जी को मिले, देवकी को मिले, और उन्होंने चरण छिए उनके, उन्होंने कहा माताजी पिताजी माफ़ कर देना हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। इस बात पर जब कथा उनके आती थी तो एकदम बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगते थे वो, और आगे की कथा नहीं बोल सकते थे एवरी टाइम। ऐसे जैसे धा अच्छा छोटा बालक होता है ना, अग्रसर होता है, जोर जोर से ऐसे फुट फुट कर अग्रसर होते थे। तो मैंने ये कथा उनसे एक बार, दो बार, पांच बार, सात बार, दस बार सुनी, समझ में नहीं आया कि क्या रहस्य है ये। तो मैं गुरुदेव को मिला राधानाथ महाराज को और उनको बताया कि हमारे जो बिरजी बाबा आपके मित्र हैं हमारे हॉस्पिटल में हैं और वो ऐसे ऐसे रोज कथा बताते हैं और ये समय पर जब आता है प्रसंग तो एकदम फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्या है ये रहस्य क्या है महाराज। तो महाराज ने इस बात पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि कृष्ण बलराम का वसुदेव देवकी के चरण छूकर ये कहना कि हमने आपका सेवा नहीं किया है, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, ये नंदगांव वासियों के लिए बड़ा सदमा था, बड़ा इज अ बिग ट्रेजेडी फॉर ऑल नंदगांव वासिस, दैट डिसाइडेड दैट कृष्णा इज नॉट गोइंग टू कम बैक। इसलिए पक्का नंदवासी, नंदगांव वासी होने की वजह से उस घटना पर उनको बड़ा दुख होता था। फिर महाराज ने बताया कि तीन घटनाएं थी जो नंदगांव वासियों के लिए बड़ी दुखदायी थी। एक है अक्रूर गमन, अक्रूर आया और ले गया उनको, बड़ा दुखदायी घटना थी। दूसरी घटना थी उन्होंने वहां जाकर वसुदेव देवकी के कदम छुए, चरण छुए और कहा कि अभी हम आपकी सेवा करेंगे, यहीं रहेंगे, ये बड़ा दुख का सदमा था उनके लिए। और तीसरा सदमा था, सदमा मतलब दुख का अनुभव, बहुत गहरा परिसीमा तक वाला अनुभव, हाँ लाइक अ लिमिट, हाईएस्ट लिमिट ऑफ सेपरेशन। जब उद्धव जी आए और फिर दोबारा वो सब उन्होंने बात करना शुरू किया ना, कृष्ण का मैसेज दिया ऐसा वैसा करके, जब तक दूर है तब ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति वहाँ से आता है जहाँ आपका प्रियतम बैठा हुआ है और वहाँ से कोई खबर लेके आता है या कोई खत लेके आता है, जैसे हम अभी सऊदी अरब में थे, ठीक है सऊदी अरब में थे, लेकिन वहाँ का लेटर आया, कोई वहाँ से आया और वहाँ से गिफ्ट लेके आया हमारे घर वालों के लिए, तो फिर वो भावनाएँ जो है उसमें खलबल मचती हैं। तो उसी प्रसंग में, तीसरे प्रसंग में जो उद्धव जी आए थे तो नंदगांव वासियों ने और पूरे ब्रजवासियों ने बड़े ही उत्कट दुख का अनुभव किया था। तो ये ब्रज का एक और एक महत्व है कि हर एक ब्रज का जो इलाका है वहाँ का भाव बहुत उत्कट है लेकिन अलग अलग भी है। जैसे कंस का मेला जो है वो केवल मथुरा में लगता है और कहीं लगता नहीं है, चरकुला नृत्य जो है वो केवल मुखाराई गांव में होता है और ब्रज के कई गांव में नहीं होता है। राधा रानी के जन्म के दिन सब लोग राधाष्टमी मनाते हैं लेकिन मुखाराई गांव जहाँ ननिहाल है, राधा रानी के नानी का घर है मुखारा देवी का, वहाँ पर चरकुला नृत्य होता है चरकुला नृत्य होता है, क्योंकि जब राधा रानी का जन्म हुआ तो राधा रानी की जो नानी थी वो बड़ी खुश हो गई कि मेरी बेटी को बेटी हो गई, बहुत दिनों बाद बूढ़ी अवस्था में, वो भी बड़ी बूढ़ी थी, तो वो बाहर आई और उन्होंने बैलगाड़ी का एक पहिया उठाया, उस पर दीपक लगाया और गोल गोल घुमा कर नृत्य करने लगी। वो तो उसको देखकर सारी गोपियाँ वहाँ की बैलगाड़ी के चक्र उठा उठा कर वहाँ पर दीपक लगा लगा कर गोल गोल घुमा कर उसके जैसा ही नृत्य करने लगी। तो वो जो चरकुला नृत्य है ब्रज में वो फेमस है लेकिन होता केवल उस गांव में है, उसी उस दिन के समय जब दुनिया सब बरसाने की राधाष्टमी मनाते हैं तो उस गांव में चरकुला नृत्य होता है। वैसे नंदगांव का ये विशिष्ट भाव है, इस विशिष्ट भाव को बाकी के गांव के ब्रजवासी इतना अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ की लीला अलग है, वहाँ का बैकग्राउंड अलग है। तो ये विविधता जो है ये भी ब्रज का एक बहुत सुंदर अंग है जिसको भी समझने में बड़ा आनंद आता है। तो इस तरह से भगवान जो है वहाँ पर रहकर अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर ना रहकर भी दिव्य कार्य कर रहे हैं और सब जीवों को उनकी उनकी अवस्था के अनुसार आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज, जिनको शरीर के संग की जरूरत थी उनको शरीर का संग देकर अपलिफ्ट कर रहे हैं, जिनको शरीर का संग देकर परिपूर्ण कर लिया था उनको विरह भाव का मौका दे रहे हैं और उनके अपने भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से भगवान का होना, केवल होना ही हर एक स्थिति के हर एक भक्त के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए किसी भी स्थिति में भगवान को अपने जीवन में स्वीकार करना ये हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी कार्य है। वेदर वी आर मोस्ट फॉलन और वेदर वी आर मोस्ट एडवांस्ड, हर स्थिति में भगवान को स्वीकार करना अपने जीवन में ये एक जीवन की सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति है और हमारे लिए बड़े भाग्य का ये लक्षण है जीवन में कि हमको ये मौका भगवान ने दिया है, अपने आप को अवेलेबल कर दिया, उपलब्ध कर दिया है, जिससे हम अपने अभी की स्थिति से कृष्ण भावना में भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो आज के दिन श्री श्री राधा रमण देव का भी आविर्भाव है आज के दिन, कल के दिन नरसिंह भगवान का आविर्भाव हुआ। हाँ, सब भक्तों के लिए एक आश्वासन दिया उन्होंने, डोंट वरी मैं हूँ, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तब तत्क्षण आऊँगा और आपको हेल्प करूँगा। और न केवल उन्होंने प्रहलाद के जीवन में ये दिखाया, लेकिन इस्कॉन के कई भक्तों के जीवन में भी ये उन्होंने अनुभूति दिया है, वो कैसे भक्तों को अनुभव देते हैं और रक्षा करते हैं उनकी। तो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ब्रज में थे उस समय, और उनको बड़ी लंबी कहानी, उनको शालिग्राम शिलाओं की प्राप्ति हुई थी नेपाल में गंडकी नदी के किनारे, जब वो चैतन्य महाप्रभु के स्वप्न में दिए हुए आदेश को पालन करने के लिए नेपाल गए थे, तो उनको 12 शालिग्राम शिलाओं की प्राप्ति हुई थी, और आकाशवाणी में भगवान ने बताया था कि यही हूँ मैं, जो मैंने कहा था कि आपको मैं मिलूँगा गंडकी नदी के पास, जब जाओगे तो इनको लेकर घर जाओ और अपनी मेरी सेवा करो, इनके साथ इनके रूप में मैं आपके संग रहूँगा। तो फिर वो शालिग्राम सेवाओं की रोज़ सेवा करते थे। एक दिन बड़ा बड़ा व्यापारी आया, एक बड़ा भक्त था वो, बड़ा धनी था, उसने सभी ब्रजवासियों ब्रजवासी गोस्वामी थे उनके लिए, उनके विग्रहों के लिए उन्होंने श्रृंगार के सामान लाए थे, मुरली मुकुट ड्रेस अलंकार जूता बाकी सारे अलंकार जो होते हैं भगवान को श्रृंगार करने के लिए, वो सब लेके आया था। और उसने इतना सुंदर प्लानिंग किया था कि रूप गोस्वामी को ये देना है, सनातन गोस्वामी को ये देना है, ऐसे करके हर एक गोस्वामी के लिए उन्हें सेट बनाकर उनके विग्रहों के अनुसार उनके अनुकूल साधन लेके आया था वो, और सबको वो बांटते हुए ब्रज की यात्रा कर रहा था। तो रूप गोस्वामी को दिया, सनातन गोस्वामी को दिया, सभी लोगों को, बाकी संप्रदायों के आचार्यों को अपने अपने विग्रहों के लिए उन्होंने श्रृंगार दिए। और जब वो गोपाल भट्ट जी के पास में आया तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे ठाकुर जी के तो अंग ही नहीं है, तो मैं कैसे ये आपका अंगरखा, ये जो धोती, ये मुरली, ये कैसे पहनाऊंगा उनको। हाँ, एक तो मुकुट पहना सकता हूँ और बाजू में मुरली रख सकता हूँ, लेकिन ये सारे वस्त्र जो है इतने मलाए अपनाई है, बाजूबंद है, कलाबंद है, अंगूठियाँ हैं, कैसे पहनाऊंगा उनको। तो उन्होंने फिर भी जिद किया, नहीं नहीं महाराज जी, वो मैं आपके लाया हूँ, आपको स्वीकार करना चाहिए, मेरे प्रेम की भेंट है आपके लिए, प्लीज़ इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। उन्होंने रख लिया उसको। उस दिन से गोपाल भट्ट जी के मन में ये विचार शुरू हुआ, काश मेरे भी ठाकुर जी के अंग होते हैं और मैं भी अन्य गोस्वामियों की तरह उनके श्री अंगों की सेवा कर सकता। ये विचार पनपना शुरू हुआ मन में। और वैसे देखो, शुद्ध भक्त जो विचार करता है ना, उसको भगवान हमेशा रिस्पॉन्स देते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वॉच योर थॉट्स, क्योंकि उसका एक दिन एक्शन में रूपांतर होगा और आगे चरित्र बनेगा आपका। तो कृष्ण भक्तिमय विचार भी जो है वो जीवन का कल्याणकारी विचार होता है। अगर आप उसको अपना नहीं पाए, उतार नहीं पाए, अमल नहीं कर पाए, फिर भी अगर वो विचार भी आप करते हैं कृष्ण के विषय में, एक असंभव विचार करते हैं फॉर एग्जाम्पल, फिर भी कृष्ण के संबंध में अगर होगा वो आपके जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। इसलिए कृष्ण के विषय में विचार करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, उसको कृष्ण भावना कहते हैं। बाकी जीवन में क्या प्रकट होगा आपके जीवन में वो तो दूसरी बात है, वो भगवान की इच्छा है, लेकिन कृष्ण के विषय में विचार करना, संकल्प करना केवल आपके हाथ में है और फ्री ऑफ चार्ज है वो, आपको कोई उसका कॉस्ट लगता नहीं है। आपका मन है, आपका क्या कहते हैं उसको, इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र है आपको विचार करने का, और विचार आप कर सकते हैं, इससे बड़ी प्राप्ति और क्या है, आपको कोई फोर्स नहीं है उसके लिए। तो जैसे ही विचार आरंभ हुआ, बढ़ता गया, नरसिंह चतुर्दशी का दिन आया। उस दिन सभी गौड़ीय वैष्णव के मंदिरों में रिवाज क्या होता है, श्रीमद् भागवतम को खोलना है और भक्तों के साथ में नरसिंह भगवान की लीला का वर्णन करना है, पढ़कर उसका आस्वादन करना है, नरसिंह भगवान का अभिषेक सेवा तो करनी है, लेकिन विशेष कार्य होता है उस दिन श्रीमद् भागवतम खोल के उसके अंदर जो नरसिंह भगवान का सातवें स्कंद में बड़ा विस्तार में वर्णन दिया है उसका आस्वादन करना। तो गोपाल भट्ट जी बैठ गए व्यासासन पर अपने अनुयायियों के भक्तों के साथ में और उन्होंने पूरा लीला सुनाया। जब लीला उनकी इस बात पर आई कि जैसे ही प्रहलाद ने कहा कि इस खंभे में भी है, और भगवान तत्क्षण उसी खंभे से प्रकट हो गए, ऐसा नहीं कभी बोला मेरे प्रहलाद ने मेरे को तैयारी करना पड़ेगा, अरे मेरा शरीर कहाँ है, मेरा हाफ मैन हाफ लायन किधर है, सब वो हाँ श्रृंगार करना है, ड्रेस करना है, नाखून किधर है मेरे, वो सब ऑन द स्पॉट ही वॉज रेडी इन द पिलर, क्योंकि प्रहलाद जी ने निर्देश किया कि इस खंभे में भी वो है। इस खंभे में ही क्यों, हर कण कण में है, हर खंभे में है, हर दीवार में है, हर सब जगह पर है। तो इसमें विशेषता क्या है नरसिंह भगवान के अवतार में, तत्क्षण प्रकट हो गए। दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द होल लीला। तो गोपाल भट्ट के मन में विचार आया, अरे अगर प्रहलाद जी के एक इशारे में वो प्रकट हो गए तो मेरे शालिग्राम से भी प्रकट हो सकते ना, वाई नॉट। तो उनको लगा कि काश मेरे शालिग्राम के अंदर से भगवान प्रकट हो गए तो कितना अच्छा लगेगा। खैर आगे की लीला बताइए, भगवान प्रकट हुए, उन्होंने नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, फिर सभी राक्षसों को मारा, फिर प्रहलाद को प्रेम किया, प्रहलाद की प्रार्थना सुनी और गोद में लिया और चाटा उनको, सब कुछ हो गया, सब समाप्त हो गया। भगवान फिर अपने धाम में प्रहलाद को वरदान देकर चले गए, सब लीला समाप्त हो गई। उस दिन के समारंभ समाप्त हुआ, फिर ठाकुर जी को प्रसाद हो गया, फिर सब लोग प्रवासी लोग अपने अपने घर चले गए, फिर गोस्वामी जी ने अपने शालिग्राम शिलाओं को सब श्रृंगार जो भी छोटा मोटा था उतार के हर एक के ऊपर वस्त्र डाल के उनको शयन कराया और सो गए। रात में भी यही विचार है, अगर प्रहलाद जी के एक इशारे से वो खंभे से प्रकट हो सकते हैं तो शालिग्राम से क्यों नहीं प्रकट हो सकते। रात को सो गए, सुबह उठे और जैसे ही नज़र उनकी गई अपने शालिग्राम शिलाओं के ऊपर, अब प्रातर्विधि हुआ नहीं था उनका अभी, वो मुख मार्जन और शौच आदि स्नान आदि क्रिया बाकी थी उनकी, देखा तो क्या है एक रुमाल जो है ना ऐसा ऊपर उठा दो, बाकी सब रुमाल ऐसे जमीन के सर पे ऐसे हॉरिजॉन्टल थे, हाँ, और एक रुमाल ऐसे पर्वत की तरह ऐसे ऊपर आ गया था, इस मानो कोई लकड़ी के ऊपर ऐसा खड़ा किया। तो बड़े उत्सुक हो गए, बड़े तुरंत जमुना जी भी भागे, क्योंकि राधा रमन जी का जो मंदिर है वो जमुना जी के बहुत पास में है, किसी घाट के पास में भागे और स्नान करके शुद्ध होकर लौट के आए, आचमन किया और तुरंत भगवान को शयन से जगाने के लिए मंत्र बोले और जगाया, और रुमाल जब हटाया तो क्या देखा, दामोदर जी नाम की जो शालिग्राम शिला थी उसके आगे से पूरा श्री विग्रह प्रकट हो गया था। राधा रमन भगवान की, ये जो चार उंगलियां दोनों ऐसे रखेंगे उसके ऊपर और चार उंगली रखेंगे तो इस 12 उंगलियों के आकार का पूरा बहुत महीन रूप से वेरी फाइनली डेवलप्ड जिसके अंग हैं ऐसे श्री विग्रह जो है शालिग्राम शिला पीछे वैसे की वैसी थी उसके आगे के हिस्से से लगी हुई ऐसा सुंदर विग्रह प्रकट हो गया था। तो गोपाल भट्ट जी इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने जाकर सब गोस्वामी को बुलाया क्योंकि तो वो सबसे जूनियर गोस्वामी थे, उम्र में सबसे छोटे और एक में साउथ इंडियन गोस्वामी थे वो। तो रूप गोस्वामी जी आए, सब लोग आए, सबने दर्शन किया। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि ये जो विग्रह है इसके चरण कमल जो है वो मदन मोहन की तरह है, इनका वक्षस्थल गोविंद जी की तरह है, इनका मुख कमल जो है गोपीनाथ की तरह है, तीनों जो प्रमुख विग्रह है जो तीन विग्रहों में भगवान के श्री अंग जो है प्रत्यक्ष प्रकट हैं, वो तीन डिफरेंट विग्रह हैं, वो तीनों जो भगवान के फीचर्स हैं वो एक ही विग्रह में इसमें प्रकट हो गए। तो रूप गोस्वामी ने उनका नामकरण किया कि इनका नाम राधा रमन रखा जाए। और इस तरह से गोपाल भट्ट जी ने दोबारा अनुभव किया कि जो प्रहलाद जी को अनुभव हुआ था वो मुझे भी अनुभव हुआ, कितने भगवान दयालु हैं कि मुझ जैसे भक्त के लिए वो उन्होंने शालिग्राम शिला से श्रीअंग को प्रकट किया और मुझे सेवा करने का मौका दिया। तो जब श्रृंगार लाया गया था वो पूरा उन्होंने ठाकुर जी को अर्पण किया और उनका श्रृंगार किया और सोचा कि इसका एक बहुत भव्य उत्सव मनाया जाए, भगवान की लीला के उपलक्ष्य में एक ब्रज में बड़ा उत्सव मनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जाकर व्यापारियों से लोन लिया, सब साहित्य का लोन लिया एक बड़े उत्सव के लिए, एक बड़ी शोभा यात्रा के लिए। तो ऐसी कथा आती है कि जब गोपाल भट्ट जो गोस्वामी हैं वो गुण मंजिरी के अवतार है ना, तो गुण मंजिरी की बहुत सहेलियाँ हैं क्योंकि गुण मंजिरी कृष्ण लीला के अंदर जो है उनके 1 करोड़ सखियाँ हैं, हर एक असिस्टेंट मंजिरी की 1-1 करोड़ सखियाँ होती है। तो उनकी बहुत सारी सखियाँ भी जब वो गुणमंजरी गोपाल भट्ट के रूप में आए तो बहुत सारी सखियाँ भी ब्रज में जन्म ले गई थी, लेकर आई थी, और काफ़ी सारी उसमें से स्त्री शरीर में थी। जो पुरुष शरीर में थे वो तो उनको आम मिल सकते थे, लेकिन जो स्त्री शरीर में थे उनकी माता पिता हैं उनको रोकते थे क्योंकि तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी यंग गोस्वामी थे, हाँ, बड़ा आकर्षक शरीर था उनका। तो जब लड़कियाँ जाती थी उनके संग में तो पिता माताओं को लगता था कि ये तो गड़बड़ है, जाना नहीं चाहिए ऐसे घर से, तो उनको रोकते थे वो। लेकिन रोज का रोकना ठीक है, लेकिन आज तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शालिग्राम शिला से श्री विग्रह प्रकट हो गए, आज बड़ा उत्सव शोभा यात्रा मनाई जा रही है, आज तो जाना ही है। और घर में बहुत जिद हो गई, झगड़े हो गए और सब लोग फिर भी चले गए, कुछ लोगों को घर में बंद करके रखा गया और बाकी सब लोग चले गए बड़े संघर्ष के साथ। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कर्जा लेकर बड़ा शोभा यात्रा मनाया ब्रिज में, बिग प्रोसेशन ऑफ राधा रमन जी डीटी एंड अभिषेक एंड फ्लावरिंग एवरीथिंग। फिर उनका स्वागत किया गया, उनको प्रतिष्ठापित किया गया, उनके ऊपर अभिषेक किया गया, उनको पुष्पा अभिषेक किया गया, महाफीस्ट ऑफर किया, प्रवचन हुए, संतों का संग हुआ। इस तरह से भव्य दिव्य रूप से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन जी का आविर्भाव मनाया। और सभी व्यापारियों को कहा था कि 15 दिन के अंदर हम आपका कर्जा चुकाएंगे। तो समारंभ हो गया। हाँ, डू यू एवर इंक्वायर इन टेम्पल कि इतना बड़ा आपने उत्सव मनाया आज, इसका खर्चा किसने दिया? यू नेवर इंक्वायर। हम जाते हैं, कथा सुनते हैं, पुष्प भी देखते हैं, चरणामृत अभिषेक देखते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं। वी डोंट इंक्वायर कि आज कितना खर्चा हुआ, किसने दिया, क्या किया। वैसे ही लोग आए, आनंद लिया और सब चले गए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी 15 दिन के बाद उनको देना था, उन्होंने बहुत कोशिश किया, वहाँ कोई डोनेशन नहीं आया। 14वीं दिन की रात को बड़े दुख हुआ उनको कि अभी तो कुछ पैसा ही नहीं, अभी वो मैं तो वैष्णव हूँ, मुझे दिया हुआ शब्द जो है वो पालन करना चाहिए, वचन जो निभाना चाहिए। व्यापारियों को मैंने वचन दिया है कि मैं 15 दिन के बाद आपका पैसा लौटा दूंगा, एक रुपया भी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, एक मोहर भी नहीं है मेरे पास। तो रात भर वो रोते रहे और भगवान से प्रार्थना करते रहे, भगवान कैसे करूँ मैं अभी, ये मैं एक वैष्णव हूँ और मैं अगर मेरा शब्द का पालन नहीं करता हूँ तो व्यापारी लोग क्या सोचेंगे और क्या वैष्णवों के बारे में उनका मत बनेगा और कैसे वो कृष्ण भावना के प्रचार को गंभीरता से लेंगे और क्या सोचेंगे मेरे बारे में। रात भर तड़पते रहे, रोते रहे, सोए नहीं हो। और अगले दिन बड़े दुखी हृदय से, हाँ, एज अ ऑनेस्ट पर्सन वो व्यापारियों के पास में गए और उन्होंने कहना शुरू किया कि देखिए महाशय माफ़ करना, मैं धन जुटा नहीं पाया, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ मुझे कुछ और समय दीजिए और मैं निश्चित रूप से भगवान की कृपा से आपका धन लौटा दूंगा। तो हर एक व्यापारी कहता है क्या महाराज जी आप शर्मिंदा कर रहे हैं, अभी तो आप आकर देखेंगे हमको अपना सब धन। दूसरे दुकान के पास गए, उधर भी उन्होंने कहा महाराज जी कुछ शर्मिंदा कर रहे हैं, नहीं ना ऐसे मत कहिए, चरण छू रहे हैं महाराज जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप पैसा दे चुके हैं, आप अभी भी आके आए थे और आपने सब धन लौटा दिया है। तब उनको ये अनुभूति हुई कि स्वयं राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी बनकर सबका धन चुकता करके चले गए। तो ऐसी सुंदर लीला है, ये लीला जो है ये हमारे नंदगांव के गोस्वामी जो है रमेश चंद्र गोस्वामी, इन्होंने हमको उस घर में बताई थी श्रीरंगम में, जिस घर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना चतुर्मास बिताया था, वेंकट भट्ट का घर, वहां पर उन्होंने ये लीला सुनाई थी इन रिस्पॉन्स टू द लीला टोल्ड बाय मुरली भट्टर। क्योंकि उस घर में जब हम लोग रह रहे थे उस यात्रा में 2010 साल में, तो उस घर में मुरली भट्टर और वेंकट भट्ट के जो अनुयायी हैं, मतलब जो वंशज हैं मुरली भट्टर और रमेश चंद्र गोस्वामी आए इस जगह, समय पर भक्त भी थे, हम भी वहाँ रहते थे। तो वहाँ वो उन्होंने बताया कि कैसे हमारे श्रीरंगम भगवान रंगनाथ जी भगवान अपने भक्त के लिए प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहानी सुनाई कि एक बार रामानुजाचार्य एक भक्त को मिले, ब्राह्मण को, बड़ा क्रुश हो गया था वो, दुर्बल हो गया था, भूख के मारे खाना नहीं था उसके पास। तो उसको देखकर रामानुजाचार्य को बड़ी दया आई और रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं आपको अन्न भेजने की व्यवस्था करता हूँ, आप चिंता मत करो। और रामानुजाचार्य भूल गए और अपने प्रचार के लिए चले गए। काफ़ी महीने के बाद में प्रचार दौरा लौट करके लौट के आए तो फिर उस ब्राह्मण को मिले, तो बड़ा दुख हुआ उनका, अरे मैंने तो उसको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अनाज चुकाऊंगा, पहुंचाया करूंगा आपके घर पे, और मैं तो पूरा भूल ही गया। लेकिन बाय द वे जब वो उसको देख रहे थे तो बड़ा हष्टपुष्ट लग रहा था वो, फिर भी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं कि भाई क्या चमत्कार होगा, उन्होंने सोचा कि इमीजिएटली उसके पास में गए, बोला माफ़ी चाहता हूँ मैं ब्राह्मण देवता, मैं आपके दिए हुए वचन को निभा नहीं पाया, मुझे माफ़ी चाहता हूँ मैं आपकी। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हो आप, दूसरे ही दिन आपने आकर मुझे खुद स्वयं अपने हाथों से अनाज दिया और रोज मुझे अनाज पहुँचाया जा रहा है और आपका मैं बहुत ऋणी हूँ। तब रामानुचार्य अनुभूति हुआ कि रंगनाथ जी भगवान स्वयं रामानुचार्य बनकर उस ब्राह्मण को उन्होंने जैसे भक्त ने जबान दिया उसको पूरा किया उन्होंने। तो इसके जवाब में हमारे रामचंद्र गोस्वामी ने यह कथा बताई कि राधा रमन जी भी, क्योंकि वो राधा रमन जी के संबंधित है ना घर, वो क्योंकि गोपाल भट्ट जी वहीं से इनका जन्म हुआ था और वहीं से महाप्रभु का संग हुआ था और वहीं से उन्होंने महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वृंदावन में गए थे वो, और वहाँ उनको गोपाल भट्ट जी को राधा रमन की प्राप्ति हुई थी। तो कितना रेलेवेंट कथा था, तुरंत उन्होंने अपना कथा बताया कि कैसे अपने भक्त को लाज रखने के लिए, सम्मान रखने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग ही विल डू। द्रौपदी के लिए वस्त्र बनकर प्रकट हो गए, कंस को मारकर उग्रसेन को राजा बना दिया, शबरी के बेर खाए, क्या नहीं किया, वेश्या को उद्धार किया, जटायु गीद को उद्धार किया, सब लोग उनके दिव्य घटनाओं का और कृपा का अनुभव करते हैं। तो ऐसे ये राजा रमन जी बड़े दयालु भगवान हैं और नरसिंह भगवान जैसे ही तुरंत भगवान के भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले हैं। हाँ, हमारे राधानाथ महाराज जब भय संकट में थे ब्रज में, उनको ब्रज के बाद बाहर परमानेंट फेंके जाने का प्लान हो रहा था कि भी ब्रज में कभी नहीं आ सकते, उनका वीज़ा ही इतना एक्सपायर हो गया, तब उस समय उस दिन सुबह 5 बजे की मंगल आरती में राधा रमन के सामने वो खड़े थे यमुना जी के किनारे से स्नान करते हुए, और उस समय उन्होंने राधा रमन से प्रार्थना किया कि अभी मुझे अगर ब्रज में रहना है तो आप ही कुछ कर सकते हो। फिर आप पढ़िए जर्नी होम के अंदर क्या हुआ उसके आगे। तो और एक प्रमाण है, कैसे नहीं कि गोपाल भट्ट जी के समय उनके लिए उन्होंने प्रकट किया कुछ, आज भी अगर आप राधा रमन के सामने खड़े रहकर हृदय से प्रार्थना करते हो तो उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। भगवान के सबसे सुंदर श्री अंगों का वहाँ पर दर्शन है, और आज भी प्रभुपाद जी कहते थे कि आज भी जो वहाँ का जो डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड है, हाँ, भगवान के अर्चो विग्रहों की जो पूजा करते हैं उसका जो लेवल है बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही मेटिकुलस है, और क्या करें आपको, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएँ उनकी कैसे प्रकट हुए वहाँ पर, और गोपाल भट्ट जी को स्वामी के कृपा के द्वारा हमको भी आज भी राधा रमन जी के दर्शन उपलब्ध है। जब औरंगजेब का हमला हुआ, क्योंकि वो इतने से थे उसके, इसलिए उनको बिस्तर के नीचे छुपाया गया था, इसलिए वो ब्रज के बाहर नहीं गए, जो बड़े बड़े विग्रह सब थे वो सब जयपुर चले गए, यहाँ वहाँ चले गए, लेकिन राधा रमन जी वहीं रह गए। और आज भी राधा रमन जी के मूल विग्रह जो है वो ब्रज में विराजमान है, राधा वल्लभ जी के, बांके बिहारी जी के और राधा रमन के, ये 3 विग्रह मूल विग्रह हैं, बाकी सब विग्रह प्रतिभू मूर्ति है, बाकी सब मूर्तियाँ ब्रज जयपुर में हैं, लेकिन ये मूल विग्रहों का दर्शन आज भी आपको होता है। तो आज के दिन आप सबको राधा रमन देव के आविर्भाव दिवस की बधाई हो, और शुभकामनाएं हमारी आपके लिए कि राधा रमन जी आपकी मनोकामना पूरी करें, आप पर कृपा करें और आपको कृष्ण भक्ति, कृष्ण चरण की भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपको थोड़ा हमने निराश किया क्योंकि आज चैतन्य चरण प्रभु कल शाम को नासिक चले गए और वो पूछ रहे थे कि कैसे करें, क्योंकि हमको रात को प्रवचन है वहाँ पर, सुबह 7:30 को यहाँ पर प्रवचन है, तो 3 बजे कार से निकलना होगा और ड्राइविंग करते हुए आना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमने कहा कि आप इतना कष्ट मत लो, ऐसे भी आप थके होंगे और ना बीमार हो जाएंगे, इसलिए आपको हमने दूध की जगह पर छाछ पिलाया। हरे कृष्णा। वही प्रश्न है किसी का? यस प्रभु जी, माइक्रोफोन दे दो प्रभु जी, आशीष मित्र जी आप लोग, अक्षय हरि प्रभु। इसमें भी थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है, तो वो कैसा है ना, वो भगवान बड़े चतुर हैं और भगवान जिस तरह से बात करते हैं, नंद महाराज को पूरा आइडिया आ गया था हाँ कि सत्य क्या है इसका। और नंद महाराज ने भी पूछा होगा ना वो मथुरा में, अभी जब कंस मर गया तो सबका भय नष्ट हो गया ना, तो सारी कहानी खुल गई होगी ना पूरी, रियल स्टोरी क्या है उसकी। जब तक कंस था तब तक कोई बात नहीं कर रहा था, कंस का देहांत हो गया तो सब लोग एकदम खुले आम ऐसे आ गए ना, सब वापस आ गए, सब कहाँ वहाँ घूम गए थे सब आ गए वापस, तो उनको पता चल गया होगा ना। अभी देखिए ना, बहुत समय थे वहाँ पर, वो मथुरा में बहुत समय थे, और वहाँ से फिर सारी घटनाएं हुई, राज्याभिषेक हुआ उग्रसेन का, उसके बाद में लौट के आए ना वो, इतना समय पता नहीं करेंगे क्या उनका रिश्ता क्या है उनके साथ में। और समझो भगवान ने उनको बता दिया कि मैं भी यहाँ रहूँगा और मेरे रिश्तेदारों को यहाँ पर सुख दूंगा, तो जैसे आप प्रश्न बोल रहे हैं कि इनके रिश्तेदार कौन हो सकते हैं, तो उन्होंने प्रश्न पूछा होगा उनको कि हाउ कैन दे बी देयर रिलेटिव। हाँ, इतना डिफिकल्ट नहीं है, जो प्रेमी व्यक्ति होता है ना, जिसको हृदय में प्रेम होता है, उसको अपने प्रियतम के बारे में जानकारी करने में बहुत देर नहीं लगती, और हृदय के अंदर भगवान भी ऐसे चतुर हैं कि वो बराबर गाइड करते हैं लोगों को, जो आपको ज़रूरी है वो जानकारी देने के लिए बड़े ही आसानी से व्यवस्था करते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि किस रास्ते से उनको ये पता चला गया होगा, लेकिन इतना विश्वास है कि उनको जो अनुभूति उनके आगे के भक्ति की प्रगति के लिए, विरह भाव के लिए आवश्यक थी, वो ज्ञान उनको उन्होंने ज़रूर किसी के माध्यम से दे दिया होगा कि अभी तुम्हारे पुत्र ये नहीं थे, उनके ही पुत्र थे, आपके साथ में रहे एज अ फॉस्टर चाइल्ड, अभी आपको वापस जाना है। ये कृष्ण भक्ति जो है ना बड़ी विचित्र है एक्चुअली, इसमें किस स्तर में कैसा अनुभव मिलेगा और क्या उसके अंदर मतितार्थ क्या है उसका, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट, क्या कृष्ण चाहते हैं आपको वैसा अनुभव देने के बाद, आपसे क्या उम्मीद रखते हैं वो कि आपको क्या मिले और क्या प्राप्ति हो जाए, ये सब बहुत गहन होता है। इट इज़ वेरी इनकंसीवेबल हाउ कृष्ण डज वॉट ही डज, हाउ इट इज़ गुड फॉर अस, अब मालूम पड़ेगा कि बाद में मालूम पड़ेगा, वी हैव टू ओनली हैव फेथ कि वट एवर ही डज इज परफेक्ट, इट कुड बी पेनफुल बट स्टिल इट इज़ गुड फॉर अस। वैसे ही नंद महाराज को अनुभूति हो गई होगी, अगर उसकी इच्छा है वहाँ रहने की तो रहने दो। अब आपको 5 मिनट बता दूँ आगे क्या हुआ, क्या समय हो गया, बहुत समय हो गया, आगे बार बताएंगे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय।